मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। साल 2015 की जुलाई महीने की आज पहली तारीख है और 1 जुलाई 2015 के इस afias.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 28 फरवरी 2016 से 15 दिनों के लिए होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं दीपक कुमार जो धनबाद झारखंड से हैं और रोहन सुखदेव जो नागपुर महाराष्ट्र से हैं। तो दीपक और रोहन, आप दोनों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग मोटिवेशन वाले पार्ट में अभी प्रेम के बारे में बातचीत कर रहे हैं और आप लोगों के ईमेल से लगातार मुझे इस बात का आभास हो रहा है कि यह चर्चा आप लोगों को न केवल अच्छी ही लग रही है बल्कि बहुत उपयोगी भी लग रही है। लेकिन फिलहाल मैं आज इस टॉपिक को गैप देना चाहूँगा और आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कुछ उन इश्यूज पर कि जो स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, इसमें सभी शामिल हैं, विशेषकर डेफिनेटली वे स्टूडेंट जो अक्टूबर की क्लासेस के लिए आ रहे हैं और वे भी स्टूडेंट जो क्लासेस के लिए नहीं आ रहे हैं, उन्हें अपनी तैयारी की शुरुआत कैसे करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, आज मैंने ये टॉपिक इसलिए भी चुना है क्योंकि इस बीच लगातार मेरे पास ढेर सारे ऐसे मेल्स आए हैं जो बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, हम अपनी तैयारी कैसे शुरू करें। इनमें से बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो अभी कॉलेज में पहुंचे हैं या जिन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी का अभी अभी निर्णय लिया है। तो मित्रों, उन्हीं की इस मांग को ध्यान में रखते हुए आज मैं अपने प्रेम वाले विषय से हटकर थोड़े से अलग से विषय पर बात कर रहा हूं, लेकिन किसी भी मायने में यह विषय आप लोगों के लिए कम उपयोगी नहीं है। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जो मानकर चलता हूं और शायद कुछ समय के बाद आप सब भी इस बात पर यकीन करेंगे कि जो सिविल सर्विस की तैयारी है बेसिकली घंटों और हार्ड लेबर की तैयारी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें लेबर की जरूरत ही नहीं है, मेहनत की जरूरत ही नहीं है या घंटों की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं ये बात इसलिए क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में मैं कहना चाहूंगा कि लगभग थोड़े बहुत अपवाद को छोड़ दें तो सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात कूट कूट कर भरी हुई है कि इसके लिए रोज 15-15, 16-16 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए और फिर 2-3 साल तक लगातार तैयारी करनी होगी, जितने भी अच्छे राइटर्स हैं उन सबको पढ़ना होगा, दुनिया का सारा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इस तरह के ढेर सारे मिथ दिमाग में बने हुए हैं। मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि मेरी इस बात पर आप अभी तुरंत यकीन न करें क्योंकि आपके दिमाग में यह तथ्य बहुत गहराई में बैठा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे आप तैयारी करते जाएंगे आप धीरे धीरे इस सत्य से रूबरू होते चले जाएंगे कि वास्तव में ऐसा नहीं है। दोनों ही स्थितियों में यदि आप सफल होते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि सच में उसकी जरूरत नहीं थी, और यदि असफल होते हैं तो फिर आपको लगेगा कि यार इतना तो सब कुछ किया, इतना पढ़ा, इतने लंबे समय तक तैयारी की, सब कुछ रट डाला, घोट डाला, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिली। और ये दोनों ही स्थितियां आपको शायद मेरी इस बात पर यकीन दिला सके। तो मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूं कि आपको अपनी तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए और साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा मैं करने जा रहा हूं कि जो स्टूडेंट अक्टूबर के बैच के लिए आ रहे हैं वो अब किस तरीके से तैयारी अपनी शुरू करेंगे, और हर तरह की तैयारी के बारे में मैं चर्चा करूंगा और साथ ही बीच बीच में भी मैं अक्टूबर के बैच में आने वाले स्टूडेंट्स को इस तरह की हिदायतें देता रहूंगा ताकि जब तक वो आए तब तक पूरी जमीन तैयार हो चुकी हो। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब किसान अपने खेत में कोई भी अनाज बोता है तो बोने से पहले जमीन तैयार करता है, पता नहीं कितनी बार उसकी जुताई करता है, उसके खर पतवार हटाता है, उसके जो ढेले पत्थर हैं उनको ढेलों को तोड़ करके मिट्टी के भुरभुरी मिट्टी में तब्दील करता है और पत्थरों को हटाता है, उसमें खाद मिलाता है और फिर खाद को मिट्टी में खूब मिक्सअप करता है। ये सारी के सारी जमीन तैयार करने की पृष्ठभूमि है। आपको क्या लगता है कि यदि वो जमीन तैयार न करके उसमें बहुत अच्छे बीज बो दे और फिर वो खाद डाल दे जो वैज्ञानिक बताते हैं और लगातार उसकी सिंचाई करता रहे तो भी बात बन जाएगी? मैं ये तो नहीं कहता कि फसल नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली उतनी नहीं होगी जितनी हो सकती थी, क्योंकि जमीन की तैयारी बेहद जरूरी है। बीज तो वहीं से अपनी जड़ें जमाना शुरू करेंगे और फिर यही जड़ धरती से रस खींचकर फल और फूल और पौधे बीज प्रोवाइड करेंगे। तो मित्रों, अगर हम सिविल सर्विस के संदर्भ में बात करें तो हमें ज्ञान के बीज बोने हैं, अपने दिमाग में ज्ञान के बीज बोने हैं। याद रखिए, मैं जानबूझकर कह रहा हूं ज्ञान के बीज बोने हैं। यहां हमें सूचनाओं के बीज नहीं बोने हैं, इंफॉर्मेशन के बीज नहीं बोने हैं। ये मैं आगे चलकर फिर शायद कभी चर्चा करूं कि दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि हमारी अब तक की जो परीक्षा पद्धति रही है वो ज्यादातर इंफॉर्मेशन पर बेस्ड रही है, लेकिन हमें अब उस अपने सिस्टम को बदलना होगा, उसे ज्ञान में तब्दील करना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मैं कुछ बातें आज आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं। नो डाउट, पहली बात मित्रों ये है कि जो भी मेरी बातों पर थोड़ा बहुत यकीन करते हैं उनको विश्वास है, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहूंगा और सलाह भी देना चाहूंगा कि प्लीज मेरी एक किताब आई है आप आईएएस कैसे बनेंगे, वो आप सबको ले लेनी चाहिए और एक बार उस किताब को पूरा पढ़ जाना चाहिए। और मित्रों, जो अक्टूबर के बैच में जो स्टूडेंट आने आ रहे हैं उनके लिए यह मेरा विशेष आग्रह है। आग्रह इसलिए है क्योंकि हमारे पास यहां 15 दिन का वक्त है। 15 दिन में हम 95 घंटे से लेकर के 100 घंटे के बीच में कुछ भी वक्त डिस्कशन करेंगे। आप ये मत समझिए कि 95 घंटे या 100 घंटे बहुत ज्यादा हैं, मैं तो समझता हूं कि बहुत कम है। बहुत कम तो नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि हम जो यहां चर्चा करें अपने हर मिनट का हम बेहद महत्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें और हम उसके आगे से बात करें जो हम किताबों में कर चुके हैं। तो सवाल यह उठेगा कि आगे की चीजों को आप सब समझ कैसे पाएंगे यदि हम किताबों की बातों में ही खोए रहे, उन्हीं को यहां दोहराते रहे, तो हमारी ये 95 आवर्स जो हैं वो इतने ज्यादा उपयोगी हम अपने लिए सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो हम वहां से आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो आगे की यात्रा मित्र तभी शुरू होगी जब आप उस किताब को पढ़कर चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। मैं जिस जमीन की तैयारी की बात कर रहा हूं, आप सब देखेंगे कि उस किताब को पढ़ने के बाद आपकी जमीन की तैयारी पूरी हो चुकी होगी। मित्रों, यहां जब आप क्लास में आएंगे तो इस तरह के प्रश्नों के लिए कोई स्थान नहीं होगा कि मुझे मीडियम कौन सा लेना चाहिए, मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए, उम्र कितनी है और पता नहीं क्या क्या मुझसे लोग प्रश्न पूछते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि वो स्टूडेंट जो सिविल सर्विस की तैयारी करने का मन बना चुका है वो मुझसे पूछता है कि मिनिमम एज कितनी है, मैक्सिमम एज कितनी है, सब्जेक्ट कैसे लेने चाहिए। इसका मतलब है कि उन्होंने जबरदस्ती मन बना लिया है, अभी तक अपना मूल्यांकन नहीं किया है कि वो सिविल सर्विस के पैटर्न को देख करके पहले अपने को इवेलुएट कर लें कि उन्हें ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बस फैसला कर लिया है कि करना चाहिए। ये बहुत अवैज्ञानिक तरीका है पढ़ाई करने का और योजना बनाने का भी, निर्णय लेने का भी। तो मित्रों, सबसे पहली बात है कि आपको वो किताब पढ़ लेनी चाहिए। आपको आप देखेंगे कि ढेर सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी और मैं सतर्क करना चाहूंगा कि बहुत इत्मीनान से उस किताब को पढ़ें, केवल पढ़ने के लिए न पढ़ें। इसके बाद मित्र सवाल आता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, उस किताब को आप पढ़ेंगे पढ़ने के बाद या पढ़ने के साथ साथ और दूसरी चीजें आप क्या करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, खासकर जो स्टूडेंट क्लास में आ रहे हैं उनको, और जो स्टूडेंट क्लास में नहीं आ रहे हैं वो फिर अपने ढंग से अपनी प्लान अपनी योजना करेंगे। मैं केवल ये बताने जा रहा हूं कि जरूरी क्या है ना। तो जो यहां आ रहे हैं उनकी जरूरत यहां की एकेडमी अलग तरीके से पूरी करेगी और जो नहीं आ रहे हैं, बट नेचुरल है कि फिर वो अपने ढंग से अपनी जो जरूरी चीजें हैं उनकी पूर्ति कहीं ना कहीं से करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भी उसकी पूर्ति करनी चाहिए। मित्रों, नो डाउट भले आप इसे अन्यथा लें, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि ये डेली ऑडियो आपको सुनना ही चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो न्यूज की मैं बात करता हूं, न्यूज़पेपर की बात करता हूं, वो आपको पढ़ने ही चाहिए। जब मैं न्यूज़पेपर की बात करता हूं मित्रों, तो आपको ऑलरेडी 7-8 न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ये क्लिपिंग्स के अतिरिक्त भी आप कोई भी 2 न्यूज़पेपर तो पढ़ें ही, हो सकता है कि इसी में से रिपीट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश में आपके पास दो अखबार आ सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि दैनिक भास्कर है और दैनिक जागरण है, दोनों में से एक अखबार आप ले लीजिए। लेकिन उस अखबार को फिर पूरा पढ़िए। आप ये मत सोचिए कि दैनिक भास्कर अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उसकी क्लिपिंग्स या दैनिक जागरण प्रोवाइड कर रहा हूं तो आपका काम हो गया। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया भी दे रहा हूं, मैं इकोनॉमिक टाइम्स दे रहा हूं, मैं इंडियन एक्सप्रेस दे रहा हूं, इसमें से किसी भी एक अखबार को आप पूरा चुन लीजिए। और यदि आप कोई और ही अखबार चुनना चाहते हैं तो नो डाउट आप हिंदू चुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदू अच्छा अखबार है। लेकिन एक अखबार आपके पास नेशनल लेवल का ऐसा होना चाहिए जिसको आप पूरी तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और इसके बाद आपके पास एक अखबार ऐसा होना चाहिए जिससे जो इकोनॉमी से रिलेटेड अखबार हो, जैसे मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल्स प्रोवाइड करता हूं, एक हिंदी का है और एक इंग्लिश का है। आप अपने मीडियम के हिसाब से चुन लीजिए। मैं सलाह आपको ये दूंगा कि आप जिस मीडियम से अपीयर हो रहे हैं प्लीज उसी मीडियम का अखबार पढ़ें, उसी मीडियम के मैगजीन्स पढ़ें, क्योंकि मीडियम ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। हर भाषा की, हर सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है और उस लैंग्वेज पर आपकी कमांड तभी होगी जब आप उस सब्जेक्ट को उसी भाषा में पढ़ें। तो आपको चाहिए कि यदि आप हिंदी मीडियम में हैं तो हिंदी मीडियम का के अखबार मैगजीन्स पढ़ें, इंग्लिश मीडियम में हैं तो इंग्लिश मीडियम के पढ़ें, और यदि किसी दूसरे लैंग्वेज में है तो कोशिश कीजिए कि अगर उसमें कोई अच्छा अखबार निकल रहा हो तो उसे पढ़ें, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। दोस्तों इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट कि आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी चाहिए, और ये बात जनरली कही जाती है कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी चाहिए, और नो डाउट कि मैं भी रिकमेंड करता हूं। उसके पीछे लॉजिक है, कारण है। कारण ये है कि जो एनसीईआरटी की जो सिलेबस है वो पूरे के पूरे देश के जो सीबीएसई के स्कूल से उसमें लागू होते हैं। तो स्वाभाविक है कि चूंकि ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन है, पूरे देश के स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो एक ऐसे सिलेबस को ज्यादा हम वैज्ञानिक मान सकते हैं, ज्यादा सेम प्लेइंग फील्ड का मान सकते हैं जो सभी जगह लागू है। अदरवाइज आप देखते हैं कि सभी स्टेट के अपने बोर्ड हैं, बोर्ड के अपने सिलेबस हैं, वो अपने एग्जाम भी लेते हैं, रिजल्ट भी निकालते हैं, लेकिन दोनों के सिलेबस में थोड़ा फर्क है। सीबीएसई का जो सिलेबस है या कह लीजिए एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो ज्यादा मॉडर्न होती हैं, थोड़ी सी ज्यादा स्तर की होती हैं। बोर्ड का मेरा अनुभव रहा है कि वो थोड़े से कम स्तर की होती हैं। तो मित्रों लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी की किताबों को आप तभी पढ़ें जब आप उसे समझ सकते हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंग्रेजी वालों को, मीडियम वालों को ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत ये आती है कि जो ट्रांसलेटेड लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी कठिन होती है। हाँ, अगर आपने शुरू से ही एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी है सीबीएसई में हिंदी मीडियम में, फिर तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि आप अभी तक बोर्ड में रहे हैं, बोर्ड का आपने एग्जाम दिया है अपने स्टेट बोर्ड का, और फिर आप एनसीईआरटी की किताबें हिंदी मीडियम में शिफ्ट करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। कुछ सब्जेक्ट्स में तो बहुत दिक्कत आती है, जैसे कि ज्योग्राफी को ले लीजिए या फिर आप इकोनॉमिक्स को ले लीजिए, इनमें काफी दिक्कतें आती हैं। लेकिन आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं उस लैंग्वेज को तो उससे चिपके मत रहिए कि क्योंकि एनसीईआरटी की ही किताबें पढ़नी है, नॉट एट ऑल। फिर आप अपने बोर्ड की किताबें पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, बस दैट्स ऑल। जो आप पढ़ें वो आपकी समझ में आना चाहिए, ये सबसे पहली शर्त होती है। अगर समझ में नहीं आ रही है तो फिर चाहे आप कुछ भी क्यों ना पढ़ें, चाहे आप ब्रह्म वाक्य पढ़ लें, वेद पुराण पढ़ लें, उसका क्या अर्थ है। समझ में आना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए न तो आप लैंग्वेज से चिपके रहें और न आप किताब से ही चिपके रहें, इंपॉर्टेंट है आपके समझ में बातें आने। तो मित्रों मैंने तीन बातें आपसे कही है, डेली ऑडियो सुनिए, न्यूज सुनिए, न्यूज पेपर्स पढ़िए, और एनसीईआरटी या अपने बोर्ड की किताबें सब्जेक्ट की पढ़िए। अब मित्रों जो सेकेंड स्टेज आती है वो आती है मेंटल प्रिपरेशन की, राइट। मेंटल प्रिपरेशन के बारे में मैं अभी आप लोगों से ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि वक्त इतना नहीं है, और उसके लिए भी मुझे कम से कम 10 मिनट तो चाहिए जब मैं आपको कंप्लीट ये बता सकूं कि मेंटल, आप मेंटली अपने आप को सिविल सर्विस के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, और खासकर यहां अक्टूबर की क्लास में आने के लिए आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो मैं आज उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं उस बात की भी चर्चा करूंगा। और डेफिनेटली कल हम लोग फिर से जो हम लोग का सब्जेक्ट चल रहा है प्रेम, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और मुझे लगता है कि हम दो तीन दिन तक इस पर बात करने के बाद शायद हमारी ये बात पूरी भी हो जाएगी। तो मित्रों अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर, और वो है कल के AIR न्यूज के बारे में। दोस्तों जो सबसे बड़ी खबर है, दो खबरें हैं अगर हम सिविल सर्विस के पॉइंट से बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो यह है डिजिटल इंडिया को लेकर के, और दूसरा है ग्रीस को लेकर के। ग्रीस के बारे में हम लोगों ने कल थोड़ी सी बात की थी, और बात करने के बाद मैंने आपसे बताया था कि जो हमारे सेक्रेटरीज, जो रेवेन्यू सेक्रेटरीज थे और जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे और जो हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी थे, उन्होंने जो दो स्टेटमेंट दिए थे कि किस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा और निर्यात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यूरोपीय संघ पर यदि इसका प्रभाव पड़ा तो भारत पर प्रभाव पड़ेगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप इन दोनों को अपनी तरफ से समझने की कोशिश कीजिए। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों में से कितनों ने ये मेहनत करने की जहमत उठाई होगी, लेकिन मुझे खुशी है कि कुछ मेल आए हैं जिसमें उन्होंने कोशिश की है। रजत बोलपुर से, जो मेरे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने कुछ लिख करके भी भेजा है, और तुम बिल्कुल सही ट्रैक पर हो रजत, तुमने ठीक तरीके से उसको एनालाइज किया है। मित्रों, अगर आपको सच में सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, ईमानदारी के साथ तैयारी करनी है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। आपको लिंक करना सीखना पड़ेगा। घटना एक होगी, छोटी सी होगी, लेकिन कैसे उस घटना की एनालिसिस करके आप उसे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, कैसे जो सिविल सर्विस के जो पेपर्स आए हुए हैं वो आपसे क्या चाह रहे हैं उसको आप ढूंढ सकते हैं, तभी जाकर के आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। अदरवाइज वाकई में प्रश्न बहुत सरल होते हैं, लेकिन याद रखिए कि उत्तर कतई सरल नहीं होते। आपको अपनी यूनिवर्सिटी के पैटर्न को बदलना ही पड़ेगा, चाहे आप उसे जिस तरीके से भी बदलें, और यही इसकी तैयारी का सबसे बड़ा चैलेंज भी है। अगर आप, जो मैंने अभी शुरुआत में कही कि यहां आपसे इंफॉर्मेशन से बात नहीं बनेगी, यहां नॉलेज में उसे कन्वर्ट करना होगा, वो नॉलेज में कन्वर्ट करने का मतलब ही यही है कि छोटी सी बात कही गई है और उस छोटी सी बात से आप एक बड़ी सी बात तैयार कर लेते हैं, जो मैंने अभी दो हमारे जो सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके स्टेटमेंट को लेकर कहा। अब आप देखिए कि कल भी न्यूज में ग्रीस की बात की गई, ग्रीस की बात लेकर के, जो बहुत ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे मैं अभी सिविल सर्विस के पॉइंट से जिसकी एनालिसिस करूं, लेकिन हम लोग थोड़ी सी बात कल के संदर्भ में भी ग्रीस को लेकर कर सकते हैं। नंबर एक, ग्रीस ने साफ साफ कह दिया है कि वो लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है, वो लोन नहीं चुका सकता है, राइट? और अब ग्रीस जनमत संग्रह कराने जा रहा है, और उसमें उसने वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने अपील की है कि जो कड़े सुधार लागू करने के लिए कहा जा रहा है उसे ग्रीस माने या न माने। मित्रों, ये कड़े सुधार क्या है, इसमें इकोनॉमिक्स की बहुत बड़ी थ्योरी छुपी हुई है। आपको कल मैंने शायद चर्चा की थी कि ग्रीस की जो भी आय है, एक तो उसके 125% उसके ऊपर कर्ज ही चढ़ा हुआ उसका टोटल जीडीपी। सोच के देखिए कि आमदनी 98 और खर्चा 125, हालत यह हो गई है। और दूसरी जो बात है कि ग्रीस इतना ज्यादा पैसा गवर्नमेंट सर्वेंट पर खर्च कर रहा है, पेंशन के रूप में खर्च कर रहा है, कि उसकी जो पूरी की पूरी जो राजस्व, उसका जो पूरा का पूरा राजस्व घाटा है वो बहुत ज्यादा हो गया है, और खासकर उस पर जो इतना कर्ज है वो बताया ही जा रहा है। देखिए, जब हम कर्ज लेते हैं तो कर्ज दो तरीके के हो सकते हैं। नंबर एक, मान लीजिए कि मैं डॉक्टर बनने के लिए बैंक से कर्ज लेता हूं, कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा और इसके बाद वो जो मैंने कर्ज लिया है वो अभी तो मुझे खर्च के रूप में दिख रहा है कि डॉक्टर बनने पर मैं खर्च कर रहा हूं, लेकिन बेसिकली ये खर्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मेरी कमाई बढ़ेगी और मैं जो कर्ज मैंने लिया है वो मैं चुका दूंगा। लेकिन मान लीजिए कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज ले रहा हूं, अब क्या होगा, बेटी की शादी में तो सब पैसा उड़ गया, उससे कोई रिटर्न नहीं आना है, तो अब जब तक मैं अपनी आय को दूसरे स्रोतों से न बढ़ाऊं तब तक मैं उस कर्ज का भुगतान नहीं कर सकता। ग्रीस के साथ प्रॉब्लम यही हुई है कि उसने जो कर्ज लिया वो सारा का उसका अधिकांश हिस्सा वो सैलरी वैलरी में देना लगा। वो ऐसा नहीं कि उससे कोई इंडस्ट्री ग्रोथ बढ़ी है या उन्होंने इकोनॉमी में कुछ और बड़े काम किए जिससे कि उनसे इनकम जनरेट होने लगी और वो कर्ज का भुगतान कर सके। कड़े सुधार यही है, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या जो दूसरी एजेंसी जिन्होंने कर्ज दिए, वो कह रहे हैं कि आप कड़े सुधार लागू कीजिए। और कड़े सुधार में जैसे देखिए भारत पर भी दबाव पड़ता है, आपको ध्यान होगा वो कड़े सुधार की बात करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक बात करता है, वो कहता है कि आप सब्सिडी बंद कीजिए। तो सब्सिडी क्या है, सब्सिडी का मतलब यही है ना कि हम बेवजह, उनके शब्दों में, हम बेवजह लोगों को सस्ते में चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। जो गैस सिलेंडर है दिया जाना चाहिए 1200 रुपए का और हम दे रहे हैं 500 रुपए का, तो 700 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, तो उसको मार्केट रेट पर दें, 1200 रुपए में बेचे तो सरकार के 700 रुपए बच जाएंगे, तो सरकार का राजस्व घाटा कम होगा। तो आप कड़े सुधार लागू कीजिए, मतलब सब्सिडी बंद कीजिए। और कड़े सुधार लागू कीजिए में हमारे यहां क्या होता है, जब हमसे ये बात की जाती है कि आप एस्टेब्लिशमेंट खर्च कम कीजिए, मतलब ये जो सरकारी तंत्र जो इतना बड़ा बना हुआ है इसको आप छोटा कीजिए, सैलरी मत बढ़ाइए, आने जाने के खर्चे कम कीजिए। तो आप देखते हैं कि बीच बीच के अखबारों में बीच बीच में आप पढ़ते हैं कि साहब सरकार ने अधिकारियों के, सरकारी अधिकारियों के विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाया, गाड़ियां खरीदने के लिए मनाही हो गई कि गाड़ियां नहीं खरीद सकते, ताकि खर्च पर कंट्रोल कर सके। और खर्च पर कंट्रोल करने का मतलब होता है दोस्तों इकोनॉमिक्स की भाषा में राजस्व घाटे को कम करना। राजस्व घाटा क्या है, आय कितनी है और हम खर्च कितना कर रहे हैं। देखिए भारत की एक बहुत बड़ी विशेषता यह कि अभी भी आपने इससे पहले कुछ दिनों पहले पढ़ा होगा कि भारत का जो राजस्व घाटा है वो काफी कंट्रोल में आ गया है। जनरली ये माना जाता है कि 3-4% होना चाहिए, लेकिन भारत का भी 4-5% के बीच में चल रहा है, लेकिन अब हम 4% के आसपास आ गए हैं। तो ठीक है, इतना आप कर्ज को मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरी आमदनी 50,000 रुपए महीना है, तो मैं बैंक का लोन 5-7,000 रुपए महीने का पटा सकता हूं, लेकिन मेरी आमदनी 50,000 रुपए है और बैंक लोन मुझे हर महीने 25,000 रुपए पटाना पड़े तो मेरे लिए मुसीबत होगी, सीधी सी बात है। तो ये जो कड़े सुधार लागू करने की बात ग्रीस से वो कह रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वहां वामपंथी सरकार है, या कह लीजिए वो जनता में अपनी छवि बिगाड़ना नहीं चाहती है, जो भी हो। अब देखते हैं कि जनमत संग्रह में क्या होता है, लेकिन एक खतरा तो आ गया है मित्रों। अब जो भारत के संदर्भ में बात कही जा रही थी, देखिए वो बिल्कुल सिंपल सी है। पहला तो ये है कि ग्रीस के साथ हमारा कोई विदेश व्यापार बहुत ज्यादा नहीं था, तो निर्यात पर हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि दिवालिया भी हो जाता है तो बहुत ज्यादा फर्क भारत पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पूरे यूरोपीय संघ पर प्रभाव पड़ गया ग्रीस का, तो यूरोपीय संघ तो हमारा दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा निर्यात साझेदारी है व्यापार का, तब तो फिर फर्क पड़ ही जाएगा। तो आपको कॉमर्स सेक्रेटरी का स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज जो उन्होंने कहा, अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, देखिए बहुत सिंपल सी आपको मैं थ्योरी बता रहा हूं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि मित्रों डिस्कशन के लिए बहुत सी चीजें हैं और मैं बहुत सी चीजें डिस्कस नहीं कर पाता हूं, लेकिन यदि आपको मेरी जल्दी जल्दी बोलने में समझने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज मुझे आप मेल से बता दें, मैं अपनी स्पीड को स्लो कर दूंगा, क्योंकि आपके लिए मैं कर रहा हूं और आपको समझ में आना बेहद जरूरी है। अब आप देखिए कि होता क्या है, किसी भी देश में जो ऋण ब्याज जो होता है, ऋण पर जो ब्याज होता है वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है। अगर बैंक आपको ऋण दे रही है और ब्याज ज्यादा नहीं ले रही है, मान लीजिए 1% ब्याज ले रही है, आधा परसेंट ब्याज ले, इसका मतलब है कि आप बैंक से ऋण लेकर के उसका कोई बहुत ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर नहीं सकते, इकोनॉमी ग्रो ज्यादा नहीं कर रही है। लेकिन अगर ऋण अधिक है, इसका मतलब है कि आप ब्याज अगर अधिक है, मान लीजिए हमारे यहां तो 11-12% तक ब्याज दर है, इसका मतलब है कि आपको लगता है कि अगर मैं बैंक से 1,00,000 रुपए का ब्याज ऋण लूंगा 10-12% ब्याज पर और उसको व्यापार में लगाऊंगा तो कम से कम 10-12% से तो ज्यादा कमा लूंगा, तभी तो आप ऋण लेंगे, नहीं तो अपने पल्ले से थोड़ी देंगे, आप अपने पॉकेट से नहीं देंगे। तो जो ब्याज दर होती है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बताती है। ग्रीस यूरोपीय देशों में वो शून्य तक आ गई है, अमेरिका वगैरह का भी यही हाल है। तो अब चूंकि ग्रीस दिवालिया जब हो जाएगा तब ये आशंका है कि जो यूरोपीय संघ के जो देश है वो अपने ब्याज दर बढ़ाएंगे। मान लीजिए कि उन्होंने ऋण पर ब्याज जो है वो बढ़ा दिया 2-3%, तो जब 2-3% ये ब्याज देने लगेंगे तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव क्या पड़ेगा उसको देखिए। बहुत सिंपल सी चीज है कि भारत में लगातार विदेशी अपना पैसा भेज रहे हैं ताकि उनको लगता है कि यहां हम अगर पैसा भेजेंगे तो हमको ज्यादा आमदनी होगी, आय होगी, है ना। FDI दे रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं, दूसरी दूसरी चीजों में पैसा लगा रहे हैं, और आपने अभी पढ़ा भी है किस तरह से भारत निवेशकों के लिए अब फर्स्ट डेस्टिनेशन बन गया है, सबसे ज्यादा आकर्षक देश बन गया, नंबर 1 पर भारत पहुंच रहा है और खूब FDI हमारे यहां आ भी रही है। तो अगर उनको यूरोपीय देशों में मिलने लगेगा फायदा 2-3%, तो हमारे यहां से पैसा निकालेंगे और फिर वहां पैसा लगा देंगे, वो यूरोपीय संघ में पैसा लगा देंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहां जो विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो कम हो जाएगा, जबकि हमारी कोशिश यह है कि हम अपनी विदेशी मुद्रा के भंडार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर रखें, बनाकर भी रखें और लगातार बढ़ाते रहें। तो ये अप्रत्यक्ष प्रभाव हुआ, डायरेक्ट नहीं हुआ। तो ये हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे उनका स्टेटमेंट था। तो मित्रों ये दो चीजें मैंने क्लियर की और मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो सोचा होगा इसके बारे में, जो भी निष्कर्ष निकाले होंगे उनसे इसको मैच कर लीजिए। हो सकता है कि आपने कुछ और भी इसके साथ साथ और भी निष्कर्ष निकाले हों, तो ये मत समझिएगा कि चूंकि मैंने नहीं बताया है तो वो गलत है। मैं तो आपको बहुत मेन पॉइंट बता रहा हूँ, इसके अतिरिक्त और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको अखबारों में पढ़ने को मिले होंगे, तो वो सब आप देख लेंगे। नहीं तो दूसरी जो सबसे बड़ी खबर थी न्यूज़ की, वो थी डिजिटल इंडिया का। भारत आज, भारत में एक सप्ताह का डिजिटल इंडिया वीक की शुरुआत प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं दिल्ली में। और ये जो डिजिटल इंडिया है, ये एक बहुत बड़ा अभियान है भारत का। मतलब मान के चलिए कि 1,00,000,000,000 रुपए का इसे माना जा रहा है, इसकी जो क्षमता है 1,00,000,000,000 रुपए। अगर डिजिटल इंडिया का सपना भारत में पूरा होता है तो भारत को लगभग 1,00,000,000,000 रुपए का व्यापार होगा। अब मित्रों देखिए कि इसके 2-3 पक्ष हैं, आगे भी चीजें और भी आएंगी, और आज मैं आपको इसको लेकर के 3-4 नॉलेज सेंटर में क्लिपिंग्स भी प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जिसमें एक दैनिक भास्कर का न्यूज आइटम के फॉर्मेट में है, और दैनिक भास्कर का ही एक आर्टिकल भी है, और इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है। इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में उन्होंने बताया है कि ये जो डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मतलब बहुत ही बेसिक और बहुत अच्छा आर्टिकल है। जैसे उन्होंने बताया कि ये 3 विजन एरिया हैं इसके डिजिटल इंडिया के। पहला है कि हमारे देश में डिजिटल से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस तरीके से फैला दिया जाए कि हर एक सिटीजन तक वो पहुंच सके। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए डिजिटल इंडिया का। दूसरा उन्होंने बताया है कि इसके जरिए सर्विसेज और गवर्नेंस प्रोवाइड की जाए, यानी कि सरकार का काम भी इससे हो, मतलब हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो इससे बेहतर हो जाए, और जो सर्विसेज हैं, जो सिटीजन्स को जो सर्विसेज चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आपको मेडिकल सर्विसेज चाहिए, तो ठीक है आप डिजिटल इंडिया से डॉक्टर के अपॉइंटमेंट ले लीजिए, आपको आने घूमने की जरूरत ही नहीं है। आपको किसी अफसर से मिलना है, आप प्री अपॉइंटमेंट ले लीजिए इंटरनेट के जरिए, आपको वहां वेट करने की जरूरत नहीं, और सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड रहेंगी। तो इस सर्विसेज की बात उन्होंने कही है, जैसे न्यूज में ही आपने सुना है ई बस्ता, इलेक्ट्रॉनिक बस्ता होगा। इलेक्ट्रॉनिक बस्ता का मतलब है कि आपको बस्ता ढोने की जरूरत ही नहीं है, सारी की सारी किताबें इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, आप वहां पढ़िए, खत्म हो गई बात। तो इस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, गवर्नेंस एंड सर्विसेज। और तीसरा विजन एरिया है वो है कि जो हमारे नागरिक हैं उनको डिजिटली हम संपन्न करके इंपावर्ड कर दें, उनका सशक्तिकरण कर दें, उनको शक्तिशाली बना दें। अब ये सब कैसे होगा, इसको आगे चल करके उन्होंने डिस्क्राइब किया है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। और ये सब कैसे हो सकता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा दैनिक भास्कर का जो न्यूज आइटम है उसमें भी की गई है। मतलब आप कल्पना करके देखिए कि देश भर में 251 सर्विस और प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, 251 सर्विस एंड प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। अब रेलवे टिकट को देख लीजिए, पहले कितना संकट होता था, अब आप बड़े आराम से रेलवे टिकट ई टिकटिंग के जरिए आप करा लेते हैं। तो इसी तरह की सर्विसेज ई कॉमर्स को लीजिए, वो सर्विसेज आपको इसके जरिए मिलेंगी। न्यूज में दोस्तों जो खबर थी, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर थी, क्योंकि न्यूज का जो झुकाव होता है ना वो लोकतांत्रिक फिलॉसफी में होता है, डेमोक्रेटिक फिलॉसफी के तहत होता है। तो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या बताया, लोगों को सशक्त बनाना। आप न्यूज को याद कीजिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट इससे जो क्वेश्चन बन रहा है वो है कि कैसे डिजिटल इंडिया के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है, राइट। और उसमें फिर उन्होंने कुछ उसी न्यूज में कुछ डिटेल्स दी थी, जैसे हुआ कि पूरे देश के 600 जिलों में इसको पहुंचाया जाएगा, 2019 तक सभी पंचायतों में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, शहरों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये लोगों को सशक्तिकरण करने की दिशा में उठाए गए कदम है। सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे, ई कॉमर्स आप जानते हैं, आप कहीं भी रहिए, आप भारत से कहीं भी अपना सामान मंगा लीजिए। इस तरह की ढेर सारी चीजें जो आपके लोगों के ऑलरेडी दिमाग में हैं, और आप सब तो अभी की पीढ़ी के लोग हैं, बहुत अच्छे से इन सब का इस्तेमाल ही कर रहे हैं। मेरे इस लेक्चर को आप कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया के ही जरिए सुन रहे हैं, दूर दराज के गांव में हैं, मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक छोटे से कमरे में बैठ के, और आप सब सुन रहे हैं, अदरवाइज ये संभव नहीं होता। तो इस तरह की ढेर सारी चीजें हैं, तो लोगों का सशक्तिकरण कैसे होगा ये आप देखेंगे। लेकिन दोस्तों इसी के साथ एक बात और है जो सिविल सर्विस के लिए जरूरी होती है, ठीक है, लोगों का सशक्तिकरण होगा, लोगों की सुविधाएं बढ़ेंगी, उसकी बात अभी हमने की। लेकिन जो दैनिक भास्कर में जो एक और आर्टिकल है, जो साइबर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर विराग गुप्ता, बहुत अच्छा आर्टिकल, आप इसको पढ़िएगा। इसमें उन्होंने दिया है कि इसके संकट क्या क्या है, इसके और क्या क्या बड़े बड़े संकट हो सकते हैं। जैसे सुरक्षा का संकट इन्होंने बताया है, आंकड़ों की सुरक्षा का संकट, और आंकड़ों की सुरक्षा के साथ साथ नो डाउट कि हमारे देश की सुरक्षा भी जुड़ी हुई है। फिर इन्होंने बताया कि जितने भी सर्वर्स वगैरह हैं सब अमेरिका में या भारत के बाहर लगे हुए हैं, तो उनके पास सारी चीजें होंगी तो वहां हमारा इतना पैसा जाएगा, जबकि अगर हम भारत में सर्वर लगाते हैं तो एक सर्वर के पीछे 1000 लोगों को रोजगार मिलता है। तो कुछ इन्होंने बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन उठाए, बहुत अच्छे प्रश्न उठाए और बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा भी है। मैं जब अंडरलाइन कर रहा था तो आप देखेंगे कि आपको पता लगेगा कि आधा आर्टिकल तो अंडरलाइन से ही भर गया है, और बहुत खूबसूरत आर्टिकल है। मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको आप लोग अपने पास रखें भी, क्योंकि यह डिजिटल इंडिया का एक दूसरा सिनेरियो है, एक दूसरे स्वरूप को दिखा रहा है। वो ठीक है, मतलब ये सारी चीजें होंगी, लेकिन दूसरे तरफ भी सतर्क रहने की जरूरत है। और आप जानते हैं कि सिविल सर्विस की तैयारी में आपको अपनी एनालिसिस पावर डेवलप करनी पड़ती है, और वो एक तरफा नहीं होती। जो चीज एक तरफा होती है वो सूचनात्मक होती है, और जो दो तरफा या कई तरफा होती है वही चीज एनालिटिकल होती है। इसमें आपकी मदद करेगा। मित्रों, न्यूज में तो बस इतनी ही। अब मैं आता हूं आज के अखबारों पर, और आप देख रहे हैं कि अखबारों की चर्चा मैं पहले ही शुरू कर चुका हूं। एक क्लिपिंग के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, जो लड़की के साथ अपनी बेटियों के साथ सेल्फी खींच करके और जो भेजने की पोस्ट करने की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही थी, और उसके बारे में मैंने आपसे ध्यान होगा कि एक बात की थी कि कैसे ये जो सोशल मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या डिजिटल मीडिया है, ये एक तरह से हमारी सामाजिक समस्याओं के निदान में कैसे भूमिका निभा सकता है, उसकी तरफ मैंने इशारा किया था। और खुशी की बात है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज उसी पर अपना एडिटोरियल कमेंट किया है, आप इसे देख लेंगे, ये मैं डाल रहा हूं। और बाकी जो दूसरी क्लिपिंग्स हैं दोस्तों, उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाता, वो सब आप देख लीजिएगा, दोहराने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आप अंततः आखिर इसको तो पढ़ेंगे ही। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के अंतिम चरण पर, जो ईमेल का चरण होता है। मित्रों, एक मेरे पास मेल आया विष्णु मीना का, जो राजस्थान से आ रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि जयपुर से जो भी स्टूडेंट आ रहे हों अक्टूबर के बैच में यहाँ क्लास ज्वाइन करने के लिए, वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो विष्णु मीना का मोबाइल नंबर है 9992932079। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक मेल मेरे पास और है जो राजस्थान से है, लेकिन स्टूडेंट ने अपना नाम नहीं लिखा है, तो वो मेल मैं अनाउंस करने की स्थिति में नहीं हूँ। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो भी इस तरह के मेल लिखते हैं, प्लीज़ मेल लिखने के बाद उसको थोड़ा सा पढ़िए भी कि वो मेल पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिहाज से ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो काम हम करें वो काम पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, और करने के बाद हम उसको एक बार दोहराने की आदत डालें तो आप देखेंगे कि किस तरह से धीरे धीरे इंप्रूवमेंट अपने आप में खुद होने लगता है। तो मित्रों, इसके अतिरिक्त बहुत से मेल हैं, उन सबको जिन्होंने मेल लिखे हैं मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ नौजवान साथियों के नाम हैं, प्रद्युम्न मिश्रा जो मऊनाथ भंजन से हैं, हिमांशु अग्निहोत्री जो कानपुर से हैं, गौतम पारस जो हजारीबाग से हैं, सोनाली कौशल जो ग्वालियर से हैं, कुमार गौरव, रजत बोलपुर के बारे में मैंने भी आप लोगों को बताया ही, आशुतोष और किशोर केशव मिश्रा पटना से, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं इसे यहीं समाप्त करता हूं, कल आप लोगों से फिर भेंट होगी, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।